एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो लिखी तो गई थी कोई 2500 साल पहले, लेकिन उसकी बातें आज भी उतनी ही ताजी लगती हैं।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सन त्सू की क्लासिक रचना द आर्ट ऑफ वॉर, जिसे हम हिंदी में युद्ध कला कह सकते हैं।
सही।
और नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई झगड़े जंग की बात होगी।
हाँ, अक्सर यही लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये किताब असल में रणनीति, लीडरशिप और कंपटीशन को समझने का एक नजरिया है। मतलब इसके सिद्धांत आप बिजनेस में लगा लो, स्पोर्ट्स में, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी।
बिल्कुल, ये सोचना ही बड़ा दिलचस्प है ना कि हजारों साल पहले चीन के युद्धों से निकले आइडियाज आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में या हमारे अपने छोटे मोटे फैसलों में भी काम आ सकते हैं।
कली कहा, ये सिर्फ जीतना नहीं सिखाती बल्कि ये बताती है कि कम से कम नुकसान में और अगर हो सके तो बिना लड़े ही अपना लक्ष्य कैसे पाया जाए, ये वो फिलॉसफी है।
तो चलिए पहले जरा उस शख्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने सब लिखा, संत त्सू।
हाँ, सन त्सू या कुछ लोग सुन वू भी कहते हैं। वो प्राचीन चीन के पूर्वी झो काल में थे, मतलब सोचिए करीब 500 ईसा पूर्व। एक उथल पुथल का दौर था वो।
हाँ, जिसे वसंत और शरद काल भी कहते हैं। वो एक मिलिट्री जनरल थे, रणनीतिकार, फिलोसोफर, पर थोड़े रहस्यमयी भी।
बिल्कुल, कुछ इतिहासकार तो ये भी बहस करते हैं कि क्या सन त्सू नाम का कोई एक व्यक्ति था भी, या ये उस दौर के कई रणनीतिकारों का मिला जुला ज्ञान है जिसे एक नाम दे दिया गया।
हाँ, ये मिस्ट्री तो है, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी उनका काम है ना? आज सन त्सू का नाम ही काफी है, मतलब रणनीति का दूसरा नाम।
सही। उस जमाने में जब सब मानते थे कि जिसके पास ज्यादा सैनिक वही जीतेगा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, असली जीत तो दिमाग से, प्लानिंग से, डिसिप्लिन से मिलती है, सिर्फ नंबरों से नहीं।
और कहते हैं कि वो शायद ही कोई जंग आ रहे हो। एक कामयाब कमांडर थे वो।
बिल्कुल, और उनका नजरिया बड़ा प्रैक्टिकल था, जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ। उन्होंने युद्ध की असली कीमत को समझा था कि जाने जाती हैं, पैसा बर्बाद होता है, लोगों का हौसला टूटता है। इसीलिए उन्होंने युद्ध को सिर्फ जोश या गुस्से का खेल नहीं माना, बल्कि एक तरह का लॉजिकल साइंस बना दिया जिसमें थोड़ी ताओवादी फिलॉसफी की भी झलक है, जैसे संतुलन, हालात के हिसाब से ढलना।
हाँ, वो फ्लो, अडेप्टेशन, ये सिर्फ तलवार चलाने की कला नहीं बल्कि दिमाग चलाने की कला है। मनोवैज्ञानिक चीज है ये।
तो ये जो किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, इसका सार क्या है, मतलब क्या है इसमें?
देखो, इसमें 13 छोटे छोटे अध्याय हैं और ये बेसिकली लीडर्स के लिए एक गाइडबुक जैसी है कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझें और कैसे जीतें।
सुमेर तो ये राजाओं और सेनापतियों के लिए लिखी गई होगी।
हाँ, जाहिर है, लेकिन इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत यूनिवर्सल है। और शायद सबसे हैरान करने वाला आइडिया ये है कि असली जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो जाए।
अच्छा, मतलब हथियार उठाना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए।
बिल्कुल, संत त्सू यही कहते हैं। असली स्किल डिप्लोमेसी में है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने में है, या दुश्मन की जो स्ट्रेटजी है उसे कामयाब होने से पहले ही फेल कर देने में है।
ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ लड़ाई टालने की बात नहीं है?
नहीं नहीं, ये समझने की बात है कि लड़ाई कई लेवल पर होती है। संत त्सू कहते हैं कि सीधे मैदान में भिड़ने से पहले दुश्मन के प्लान पर हमला करो, उसके जो साथी हैं, जो अलायंस है, उन्हें तोड़ो, वो ज्यादा असरदार है।
और इसके लिए किन चीजों पर जोर दिया है उन्होंने?
बहुत सी चीजों पर, जैसे धोखा, भ्रम पैदा करना, सही टाइमिंग और सही पोजीशन चुनना, और सबसे जरूरी इंटेलिजेंस, मतलब खुफिया जानकारी।
तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की एक मास्टर क्लास है।
हाँ बिल्कुल, ये सिखाती है कि सिचुएशन को कैसे एनालाइज करें, इंसान के नेचर को कैसे समझें और परसेप्शन को कैसे मैनेज करें अपने फेवर में।
ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, किताब के अंदर चलते हैं। अध्याय दर अध्याय जाने के बजाय इसके जो मुख्य विषय हैं उन पर बात करते हैं।
हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो पहला और शायद सबसे बेसिक थीम जो निकल कर आता है वो है प्लानिंग, सोच समझ कर योजना बनाना और कोशिश करना कि बिना लड़े ही काम बन जाए।
हाँ, सन त्सू शुरू में ही कहते हैं कि युद्ध कोई मजाक नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, तो सबसे पहले दिमाग ठंडा रखकर असेसमेंट जरूरी है।
उन्होंने वो 5 फैक्टर्स बताए हैं ना। पहला है मार्ग या ताओ, मतलब नैतिक उद्देश्य, लीडर और लोगों के बीच एकता। फिर स्वर्ग यानी मौसम और समय, पृथ्वी यानी इलाका टेरेन,
हाँ, फिर सेनापति यानी लीडर की क्वालिटीज, और पांचवा विधि यानी संगठन और अनुशासन। कहते हैं इन पांचों चीजों को अपने और दुश्मन के लिए तौल लो तो पता चल जाएगा कौन जीतेगा।
बिल्कुल, और इसी प्लानिंग का हिस्सा है ये समझना कि युद्ध बहुत महंगा पड़ता है, रिसोर्स बहुत लगते हैं, अगर लड़ाई लंबी खिंच गई तो देश बर्बाद हो सकता है।
तो लक्ष्य होना चाहिए कि जीत जल्दी मिले, निर्णायक हो,
या उससे भी अच्छा कि ऐसी सिचुएशन बना दो कि दुश्मन लड़ने की सोचे ही नहीं। वो जो कहावत है ना, सर्वोच्च उत्कृष्टता दुश्मन को बिना लड़े हराने में है।
हाँ, वो इसी सोच से आइए।
सही, दुश्मन की स्ट्रेटजी को समझो, उसे काउंटर करो, उसके साथियों को उससे दूर कर दो।
मैदान में सीधी लड़ाई तो लास्ट रिजॉर्ट है।
सुनने में ये बड़ा आइडियलिस्टिक लगता है, पर शायद ये बहुत प्रैक्टिकल भी है।
बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संत ज़ू कहते हैं कि किलों की घेराबंदी करना सबसे बेवकूफी का काम है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उससे अच्छा है दुश्मन की सोच पर हमला करो। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन।
एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन, जो हमें दूसरे बड़े थीम पर लाती है, ज्ञान, इंटेलिजेंस और धोखे का इस्तेमाल।
ये तो शायद सबसे फेमस लाइन है किताब की, दुश्मन को जानो और खुद को जानो तो 100 लड़ाइयों में भी खतरा नहीं।
हाँ, सन त्ज़ू का मानना था कि फ्यूचर का पता किसी पूजा पाठ या अटकल से नहीं लगता, वो जमीनी हकीकत से, लोगों से, मतलब जासूसों से मिलता है, इंटेलिजेंस नेटवर्क से।
तो आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, क्या सोच रहा है वो।
और उतना ही जरूरी है अपनी ताकत और कमजोरी को जानना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना।
अच्छा, और जानकारी का दूसरा पहलू है धोखा।
हाँ, डिसेप्शन। सन त्ज़ू की एक और फेमस लाइन है, समस्त युद्ध छल पर आधारित है, मतलब अपनी असली ताकत छुपाओ, दुश्मन को कंफ्यूज रखो।
जैसे क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब अगर आप ताकतवर हो तो कमजोर होने का नाटक करो, अगर पास हो तो ऐसा दिखाओ कि बहुत दूर हो, दुश्मन को हमेशा अंदाजा लगाते रहने दो, उसे वो करने पर मजबूर करो जो आप चाहते हो, ना कि वो जो वो खुद करना चाहता है।
ये तो चालाकी की बात हुई।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है तीसरा अहम विषय, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, सही पोजीशन चुनना और फोर्स का सही इस्तेमाल।
पानी की तरह बनो, है ना?
हाँ, वही। सन त्ज़ू कहते हैं रणनीति पानी की तरह होनी चाहिए, जो हर रुकावट के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेती है, किसी भी बर्तन में ढल जाती है। अगर आप रिजिड हो, अड़ियल हो, तो हारोगे।
एक अच्छा लीडर वो है जो सिचुएशन देखकर अपनी प्लानिंग बदल सके।
बिल्कुल, वो 9 तरह की जमीनों या 9 स्थितियों की बात करते हैं, मतलब हर सिचुएशन अलग है तो आपकी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए।
कभी पीछे हटना सही है, कभी डटे रहना, और कभी कभी तो शायद अपने बॉस या राजा का ऑर्डर भी मानने से इनकार करना पड़ सकता है।
हाँ, अगर वो ऑर्डर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है यही असली ताकत है।
और सही पोजिशनिंग की भी बात करते हैं वो।
हाँ, टैक्टिकल पोजिशनिंग, कहाँ लड़ना है, कब लड़ना है, ये बहुत जरूरी है। जैसे ऊंची जगह पर रहना फायदेमंद है, सूरज आपकी पीठ की तरफ हो, दुश्मन की आंखों में पड़े, छोटी छोटी बातें हैं पर असर डालती हैं।
और वो चेंग और ची क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक?
हाँ, चेंग मतलब सीधा, अपेक्षित हमला, दुश्मन को उलझाए रखने के लिए, और ची मतलब अप्रत्यक्ष, चौंकाने वाला हमला, निर्णायक चोट करने के लिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है।
जैसे एक बॉक्सर जैब मारता रहता है ध्यान बटाने के लिए, और फिर अचानक एक हुक मार देता है।
बिल्कुल सही उदाहरण। ये बेसिकली एनर्जी या मोमेंटम शी बिल्ड करने और उसे सही टाइम पर रिलीज करने जैसा है।
ओके, तो हमने बात की प्लानिंग की, इन्फॉर्मेशन और धोखे की, फ्लेक्सिबिलिटी और पोजिशनिंग की, इन सबको लागू करने के लिए क्या चाहिए?
एक काबिल लीडर और एक अनुशासित टीम या सेना, ये चौथा इम्पॉर्टेंट पिलर है। सन त्ज़ू लीडर के गुणों पर बहुत जोर देते हैं।
क्या गुण होने चाहिए एक लीडर में?
बुद्धि होनी चाहिए, ईमानदारी, हिम्मत, थोड़ी दया भी, लेकिन साथ में सख्ती भी, एक सही बैलेंस जरूरी है।
और वो लीडर की 5 खतरनाक कमियों के बारे में भी बताते हैं।
हाँ, वो भी, जैसे लापरवाही या रैशनेस, कायरता, बहुत ज्यादा गुस्सा या जल्दबाजी, अपनी इज्जत का बहुत ज्यादा मोह होना, या फिर जरूरत से ज्यादा हमदर्दी दिखाना जो आपको कड़े फैसले लेने से रोक दे।
मतलब लीडर का काम सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपनी टीम का मोराल भी हाई रखना है, सैनिकों की साइकोलॉजी समझनी है, उन्हें एकजुट रखना है, चाहे वो ड्रम बजाकर हो, झंडे दिखाकर हो, या साफ नियमों से हो।
ये तो वाकई एक कंप्लीट गाइड लग रही है लीडरशिप और स्ट्रेटजी पर।
है ही, तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या मेन टेक अवेज होंगे?
मेरे लिए तो पहला और सबसे बड़ा टेक अवे यही है, असली जीत दिमाग की होती है, ताकत की नहीं। और सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े मिले।
मैं सहमत हूँ। दूसरा, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। खुद को जानना, दुश्मन को जानना, सिचुएशन को जानना, ये जीत की गारंटी तो नहीं पर चांस बहुत बढ़ा देता है। इंटेलिजेंस सबसे ऊपर है।
तीसरा, स्ट्रेटजी में धोखा और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। मतलब दुश्मन को हमेशा अंधेरे में रखो कि तुम क्या करने वाले हो, और हालात बदलें तो तुम भी बदलो, पानी की तरह बनो।
राइट। चौथा, प्लानिंग और तैयारी। बिना सोचे समझे इमोशन में आके कोई कदम मत उठाओ। लड़ाई शुरू होने से पहले ही होमवर्क पूरा कर लो, वहीं आधी जीत हार तय हो जाती है।
और पांचवा, लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, ये समझदारी, हिम्मत, अनुशासन और अपनी टीम की साइकोलॉजी समझने का मिक्सचर है। मोराल बनाए रखना बहुत जरूरी है।
ये सारे सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं रुकते हैं ना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स।
हाँ, किसी मुश्किल कलीग से डील करना है तो सीधे भिड़ने के बजाय पहले समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी चिंता क्या है, दुश्मन को जानो, फिर अपनी बात रखो। कूटनीति, ये बिना लड़े जीतने जैसा हो गया ना।
या कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे घर खरीदना है या करियर बदलना है, पूरी रिसर्च करना, मार्केट समझना, अपने रिसोर्स देखना, ये सब प्लानिंग और इंटेलिजेंस का हिस्सा है।
सही कहा। इस किताब में कुछ कोट्स भी बहुत जबरदस्त है जो एकदम दिमाग में बैठ जाते हैं।
हाँ, कुछ पर बात करते हैं। पहला तो वही सबसे फेमस, सर्वोच्च युद्ध कला शत्रु को बिना लड़े वश में करना है। ये बार बार याद दिलाता है कि हिंसा लास्ट ऑप्शन है, स्ट्रेटजी पहले आती है।
दूसरा, समस्त युद्ध छल पर आधारित है। आज के जमाने में देखो, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक न्यूज, ये बात कितनी सच लगती है। परसेप्शन बनाना और बिगाड़ना कितना बड़ा हथियार है।
तीसरा, यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको 100 युद्धों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस और एक्सटर्नल नॉलेज के बैलेंस की बात करता है। एग्जाम की तैयारी हो या बिजनेस डील, ये हर जगह फिट बैठता है।
और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, अराजकता के बीच में अवसर भी होता है। यानी मुश्किल हालात में जब सब गड़बड़ लग रहा हो तब भी मौके छिपे हो सकते हैं। घबराने के बजाय शांत रह के देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है।
वाह, ये तो बहुत पॉजिटिव नजरिया है। अच्छा, अब ये बताओ कि इन 2500 साल पुराने आइडियाज को आज की दुनिया में अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बिजनेस में तो शायद सीधा सीधा इस्तेमाल होता होगा।
हाँ बिल्कुल, बिजनेस स्ट्रेटजी में तो बहुत होता है। मार्केट को समझना, कॉम्पिटिटर की कमजोरी ढूंढना, फिर उस पर अटैक करना, मतलब बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस देना, नेगोसिएशन में सही टाइम पर सही आर्ग्यूमेंट देना, ये सब संसू ही तो है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी, रिसोर्स मैनेज करना, टीम को मोटिवेटेड रखना।
हाँ बिल्कुल, और पर्सनल लाइफ में भी। सोचो अगर करियर में आगे बढ़ना है तो अपनी स्किल्स देखो, खुद को जानना, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या जरूरतें हैं, दुश्मन इलाका जानना, कहाँ गैप है जहाँ आप फिट हो सकते हो, कमजोर बिंदु, ये सब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है।
या रिश्तों में ही देख लो, कोई झगड़ा हो जाए तो गुस्से में चिल्लाने के बजाय भावना में बहना, थोड़ा रुक कर सोचो, योजना, सामने वाले की बात समझो, दुश्मन को जानो, फिर अपनी बात शांति से रखो। कूटनीति।
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई टीम लीडर है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है, टीम स्ट्रेस में है। अब एक लीडर जो संजू को समझता है, वो सिर्फ डांटेगा नहीं।
वो क्या करेगा?
वो देखेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या रिसोर्स कम पड़ रहे हैं, आर्थिक युद्ध वाला पहलू, क्या काम ठीक से बटा नहीं है, विधि और अनुशासन, क्या टीम का मोराल डाउन है, मनोविज्ञान, और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेगा। शायद डेडलाइन बढ़वाएगा या और मदद लाएगा या टीम को मोटिवेट करेगा। ये है स्ट्रेटेजिक अप्रोच।
सही है। तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए शायद ये कि स्ट्रेटजी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सोचने का एक डिसिप्लिन तरीका है। तैयारी, जानकारी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो टूल हैं जिनसे आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। और हाँ, असली ताकत अक्सर शांत रहने और समझदारी दिखाने में होती है।
और मेरे लिए सबसे कमाल की बात ये लगी कि ये किताब कितनी ज्यादा साइकोलॉजिकल है। ये सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में नहीं है, ये इंसानी फितरत को, डर को, लालच को, हौसले को समझने के बारे में है। और वो बिना लड़े जीतने वाला आइडिया, वो बहुत गहरा है। ये सिखाता है कि कंट्रोल सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने ऊपर भी रखना कितना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल। और एक आखिरी बात शायद ये जोड़ी जा सकती है कि सन त्सू के सिद्धांतों को समझना हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बनाने में मदद नहीं करता।
अच्छा, और क्या करता है?
ये हमें दूसरों की स्ट्रेटजी को पहचानने में भी मदद करता है, चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई पॉलिटिकल स्पीच हो, या ऑफिस में कोई सिचुएशन हो, जब कोई हमें किसी खास तरीके से सोचने या करने पर मजबूर करना चाह रहा हो, तो हम उसे बेहतर समझ पाते हैं, थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाते हैं।
ये तो बहुत जरूरी बात कही। एक तरह से ये हमें मैनिपुलेशन से भी बचाता है।
हाँ, कह सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।